वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गए सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रकार से विचार किया है और हम लोग अब इस बात पे विचार कर रहे हैं कि यदि हमारे पास बहुत थोड़ा सा ज्ञान है और हम बहुत बड़े बड़े व्रत नियम संयम का पालन नहीं कर पाते हैं तो यदि हमारे जीवन में भक्ति भगवान के प्रति ठीक ठीक हो तब भी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। शॉर्टेस्ट यदि कोई वे है, एक बहुत सीधा सच्चा सा रास्ता है, तो वो यही है कि मैं भगवान के प्रति अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा को निरंतर बढ़ाता जाऊं। भगवान की भक्ति, विशेष रूप से वीतरागी भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे जीवन को स्वाधीन भी बनाती है। पिछले दिनों हमने बहुत प्रकार से भक्ति पर विचार किया है और कब तक, शायद पूरे जीवन भी हम भक्ति पर विचार करें तब भी हम नहीं समझ पाएंगे कि सचमुच ये श्रद्धा और भक्ति की भाषा कैसी है। आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है कि आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं हो जो निजाधीन। भक्ति करते समय हमारे अंदर क्या भावना है कि मैंने आज तक अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये विषय कषाय मुझे दुख पहुंचाते हैं, भगवान कुछ ऐसा करें, मैं आपके दर्शन करके आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करके सिर्फ एक ही भावना आपके चरणों में भाता हूं कि मैं अपने आप में लीन हो सकूं और निजाधीन या कि स्वाधीन हो सकूं। संसार में स्वाधीनता या स्वतंत्रता ही सुखदायी है, ये सब जानते हैं। कोई किसी के पराधीन नहीं रहना चाहता, कोई किसी का स्वामीपना पसंद नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे पर अपने स्वामित्व को आरोपित करने की भावना जरूर रखता है, जबकि वो स्वयं भी कोई व्यक्ति उस पर अपना स्वामित्व आरोपित करे तो उससे बेचैन हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने अपने ऊपर ही अपना अधिकार रखें तो ये जो स्वाधीनता है वो ही हमें सुख पहुंचाएगी। पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है। भगवान से हम, उनकी भक्ति से हम अगर कोई चीज चाहते हैं, कोई भावना रखते हैं, तो एक ही भावना है कि भगवान ये संसार की पराधीनता मिटे और मैं स्वाधीन हो सकूं, अभी तो मैं क्रोध के अधीन हो जाता हूं और अपने हाथ से अपने संबंध बिगाड़ लेता हूं। जब जब मैं मान कषाय के अधीन हो जाता हूं तो दो लोग एक साथ रह नहीं पाते। जब माया कषाय के अधीन होता हूं तो मैं दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाता, ना दूसरा कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है। और जब जब मैं लोभ के अधीन हो जाता हूं तो मुझे सैकड़ों प्रकार की उपलब्धि हो जाने के बावजूद भी तृप्ति नहीं होती। ये मेरी कषायों की अधीनता मुझे निरंतर यहां दुख पहुंचाती है। भगवान मैं कैसे करूं जिससे कि मैं स्वाधीन हो सकूं? तो भगवान तो आकर के स्वाधीन करेंगे नहीं, पर उनके माध्यम से हमें स्वाधीनता का उपाय तो मिल गया। इन सब चीजों की अधीनता यदि हम छोड़ दें तो हम तो स्वाधीन हैं। स्वाधीनता के लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पराधीनता के जो कारण है उनसे हम बचना शुरू कर देवे तो हम स्वाधीन तो हैं, वो तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ऐसा यदि हम भगवान की भक्ति के दौरान और भावना भाएं, ऐसे हम अगर विचार भगवान की भक्ति के समय करें कि हमारे जीवन में स्वाधीनता आए, और फिर हम जब भगवान की भक्ति कर चुके तब भी और बाहर आकर के भी हम उसी स्वाधीनता का स्वाद भी लें। हम भगवान के चरणों में जो भावना भा के आते हैं, हम बाकी जो हमारा अपना कार्य क्षेत्र है, जो हमारा फील्ड है जिसमें कि हमें 24 घंटे बिताना है, वहां कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पराधीन कर देती हैं, उन सब से हम बचने की कोशिश करें। हम दूसरे की पराधीनता से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे भीतर के मेरे परिणाम मुझे कहां कहां पराधीन कर देते हैं इस बात को हम भूल जाते हैं। और अगर अपने ही परिणामों से अपने जीवन में आने वाली पराधीनता से हम बच जावे, ये जितने भी काषायिक भाव हैं वो सब मुझे पराधीन करते हैं, मैं इनको पहले जीतूं। मैं बाहर से स्वतंत्र होने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन अपने अंतरंग परिणामों की पराधीनता से मुक्त होने की भी कोशिश करो। प्रभाकर ने स्वतंत्रता के बारे में दो बहुत अच्छे चित्रण लिखे, मैं कल देख रहा था। वो कहते हैं कि मैं जंगल में गया और वहां मैंने देखा कि वृक्षों पर बहुत बंदर और उछल कूद कर रहे हैं। कोई बंदर किसी की पूंछ पकड़ के खींच देता है, कोई बंदर किसी को जो है वो धक्का देकर के आगे बढ़ जाता है, तो कोई किसी के कान उमेट देता है, तो कोई किसी को गुदगुदी लगा देता है। तो सब मजे में है क्योंकि सब खुले हुए, वे सब स्वतंत्र हैं, किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं है, इसलिए अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन वे कहते हैं कि उन्हीं बंदरों को मैंने जब शहर में एक बंद गाड़ी में जाते देखा तो मैं चौंक गया। वे उस बंद गाड़ी में हैं और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की फिराक में है, एक दूसरे को नोचते हैं, खरोटते हैं। अगर बेटा जो है माँ का दूध पीना चाहता है तो माँ उसे काट देती है, उसे दुत्कार करके हटा देती है। मैंने उन बंदरों को जंगल में देखा और मैंने उनको एक बंद गाड़ी में देखा, मुझे दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर लगा। तब मुझे समझ में आया कि स्वाधीनता आनंद देने वाली है, ये जो पराधीनता है वो कष्टकारी है। इतना छोटा सा उदाहरण है और हम अपने जीवन में इससे मैसेज ले सकते हैं। हम खुद देखते हैं इन चीजों को कि जितने हम पराधीन होते चले जाते हैं, हमें लगता जरूर है कि ये सारी चीजें हमारे पास होंगी तो हम सुखी होंगे, लेकिन जितनी हमारी लोलुपता है वो हमें जितना पराधीन करती है उससे ज्यादा और कोई चीज पराधीन। एक बार गुस्सा आकर के 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है, थोड़ी किसी के साथ छल कपट कर लो तो भीतर भीतर लगने लगता है कि अब छोड़ो नहीं तो पकड़े जाएंगे, सो छल कपट छोड़ देते हैं। अहंकार थोड़ी देर को घेरता है, सो अहंकार के अधीन होकर के और थोड़ा बहुत सम्मान की आकांक्षा कर लेते हैं या दूसरे का तिरस्कार कर देते, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चलती। ज्यादा देर चलने वाली चीज है, 24 घंटे चलने वाली अगर चीज है, गुस्सा नहीं चल सकता 24 घंटे चल सकता है हमारी अपनी आसक्ति, हमारा अपना लोभ। सबसे ज्यादा अगर हमें पराधीनता है तो एक ही चीज की पराधीनता है, ये चाहिए सब चाहिए, और दिन भर चाहिए, 24 घंटे चाहिए, सोते जागते हर अवस्था में चाहिए। और ये अधीनता नहीं समझ में आती, लगता है कि ये सारी चीजें होंगी तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन ये सब अपने हाथ से अपने आप को पराधीन बनाने की प्रक्रिया है। हम जितना अपने इस लोभ को कम करते चले जाएंगे, जितना हम अपने इन कषायों को मंद करते जाएंगे उतने हम स्वाधीन होते जाएंगे। भगवान की भक्ति हमें स्वाधीनता सिखाती है। आज हम अपने उतने सारे भक्ति के विचारों में एक विचार और डाल लें कि आज हमने सीखा कि हम धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति से अब हम पराधीन नहीं होंगे, अब हम स्वाधीन होने का उपाय करेंगे। हम भगवान से मांगते हैं कि हमें ये चीजें दे दो, हमें ये चीजें दे दो। अब हम विचार कर रहे हैं कि ये चीजें लेकर के करूंगा क्या, ये तो और पराधीनता का उपाय हो जाएगा। मैं तो भगवान के सामने भक्ति करते समय यही कहूंगा कि मेरी ये पराधीनता आप ले लो, मेरी पराधीनता हटाओ, मैं सब चीजों को छोड़ करके अपने उस स्वाधीन स्वभाव को महसूस कर सकूं। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सबने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में वो बहुत बड़े विद्वान माने गए। और एक बार एक स्टेशन पर एक युवक उतरा और वो अपने उसमें था, रोब में था। पढ़ लिखने के बाद आदमी को लगता है कि जैसे कि बाकी सब तुच्छ हैं, अहंकार आ जाता है, पता नहीं किस किस तरह के अहंकार आ जाएं। वो उतरा और उसने कुली को आवाज दी, लेकिन वहां उस छोटे से स्टेशन पर कौन कुली था। दो चार दस्तावे आवाज दी तो ईश्वरचंद विद्यासागर वहीं टहल रहे थे। वो देहाती जैसे कपड़े पहने हुए थे, कोई ज्यादा दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। तो आकर के जैसे ही पास में आए तो उस युवक ने सोचा कि ये कुली है, तो उससे कहा तुम लोग बहुत आलसी हो गए, उठाओ उठाओ ये मेरा सामान उठाओ और ले चलो। तो वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने सामान उठाया और चल दिए उसके पीछे पीछे। और जब युवक अपने घर पहुंचा तो पिता ने दरवाजा खोला तो पिता तो दंग रह गए, सामान कौन लिए हुए है। वो तो पहचानते थे, युवक नहीं पहचानता था। हम अपने अहंकार में दूसरे को कहां पहचानते भैया, हम तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें सब पहचाने। हम दूसरे को हमेशा दुत्कारते ही रहे, हम दूसरे का तिरस्कार करते रहे, ये तो मान कषाय का खेल है और इसके अधीन है, सब अधीन है इसके। और वो तो पहचान गए, सो बड़े चकित होकर के और उनके पैर छू लिए। जैसे ही पिता ने पैर छुए तो अब युवक के दंग होने की बारी थी कि ये क्या हुआ, मैं तो समझ रहा था कुली है लेकिन ये तो कोई और है। तो पिता ने कहा कि पैर छुओ बेटे, ये बहुत बड़े विद्वान बंगाल के ईश्वरचंद हैं। ये पुत्र तो क्या कहे, पैर छू लिए कि कुछ संबोधन दें। तो उन्होंने जो बात कही कि हम इस स्वतंत्र देश में बैठे हैं, हम इस स्वतंत्र देश में बैठे हैं, हमें कम से कम इस स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए अपने सारे काम अपने हाथ से करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए दूसरे के। हम 10 नौकर अपने साथ में रखे हैं तो हम सोचते हैं कि बड़े हो गए, लेकिन हम उन 10 पे डिपेंड हो गए एक एक काम के लिए। अपनी कटोरी अपने हाथ से नहीं उठा पाते, नौकर चाहिए उठाने के लिए। अपना हाथ ऐसा करेंगे जब वो पहनाएगा उसमें, अपने हाथ से नहीं पहन सकते, इतनी पराधीनता। लेकिन ये पराधीनता हमें ऐसी मालूम पड़ती कि जैसे बड़ी सुखद है, चार लोगों के बीच हमें इस पराधीनता का एहसास होते हुए भी हम इसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। भैया भगवान की भक्ति करने के बाद भी अगर हमने अपने संसार में ये सारी पराधीनताएं जोड़ के रखी तो फिर भगवान की उस स्वाधीन और उस स्वाभाविक स्थिति से हमने क्या मैसेज लिया। अब हम जाकर के कल से जब भक्ति करेंगे तो जरूर ये विचार करना चाहिए कि भगवान आपने तो सारी चीजों को से मुक्त होकर के अपनी स्वाधीनता हासिल कर ली, मैं तो उन्हीं चीजों को जोड़ जोड़ करके सोचता हूं कि मुझे कोई सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा मुझे। अब मैं आपके जैसे ही स्वाधीन बनने के लिए प्रयत्न करूंगा। चित्ते कुर्वन, दादीराज महाराज आज अपन ने बहुत सारी दादीराज महाराज की भक्ति से सीखी है बहुत सारी बातें। आज दो पद और बाकी बचे हैं, एक पद में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, चित्ते कुर्वन निर्वधि सुख ज्ञान दृग्वीर रूपम देवत्वाम या समय नीमा दादरेण स्थिति श्रेयो मार्गम सखलु सुकृति तावता पूरयित्वा कल्याणा नाम भवति विषया पंचिदा पंचिदा नाम। भगवान हम अधिक क्या कहें, आपकी भक्ति से तो हमें अरहंत पद की प्राप्ति होती है, कल्याणा नाम भवति पंचदा पंचिदा नाम, पांचों कल्याणक को प्राप्त करके तीर्थंकर पद को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सर्वोत्कृष्ट स्वाधीनता हे भगवान आपकी भक्ति से, एकमात्र आपकी, एकमात्र कह रहे हैं और दूसरी चीजें नहीं कह रहे। श्रेयो मार्गम सकलु सुकृति तावता पूरित्व कल्याणानाम भवति विषया पंचधा पंचिता। एकमात्र पांचों कल्याण की क्षमता को प्राप्त करने वाले अगर कोई आत्मा है तो वो आपकी भक्ति से ही बन सकती है। अनंत भगवान की भक्ति भी आपको याद है, जब अपन 16 कारण भावनाएं पढ़ रहे थे तब 16 कारण भावनाओं में एक अनंत भक्ति भी तीर्थंकर बनने में कारण है। और वही बात यहां पर वादिराज महाराज कह रहे हैं कि अधिक क्या कहें, आपके जैसी अनंत अवस्था, आपके जैसी स्वाभाविक और आपके जैसी स्वतंत्र स्वाधीन अवस्था, हम उतनी ऊंचाई भी पा सकते हैं। भगवान की भक्ति से हम और कुछ ना मांगे, हम तो भगवान को ही मांग ले कि भगवान आपके जैसे बन जावे, इसीलिए हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। अनंत भगवान की दो विशेषताएं हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमान्य हैं। क्या ये क्वालिटी हमारे अपने जीवन में धीरे धीरे करके नहीं आनी चाहिए? सर्वज्ञ होने के मायने क्या है? जो सबको जानते हैं, है ना? लेकिन अपने आप को जाने बिना सब कुछ जान लेना व्यर्थ है। ऐसा कहो कि वे अपने आप को जानते हैं इसलिए सबको जानते हैं। और मेरी अपनी गाफिलता यह है कि मैं दुनिया भर को जानने के प्रयत्न में हूं, अपने आप से वाकिफ नहीं हूं। मैं अपना आमना सामना करने से कतराता हूं, मैं दूसरे का सामना करने की तैयारी में हमेशा रहता हूं। और भगवान मुझे निरंतर ये कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, उस अनंत पद को पाने के लिए अपने आप की पहचान होना बहुत जरूरी है। यदि हम ये मैसेज भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति करते हुए ले लें कि भगवान आपने सारे समाधान पा लिए। सर्वज्ञता का एक और बहुत एप्लीकेबल कहना चाहिए उपयोग है, एप्लीकेबल एक वे है कहना चाहिए, कि हम उससे ये भी सीख सकते हैं कि सर्वज्ञ होना यानी सब कुछ जानना, वो तो है ही। समस्त द्रव्य की समस्त अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत हस्तामलकवत जान लेना, ये तो केवल ज्ञान में सर्वज्ञता की बात है ही। लेकिन एप्लीकेबल क्या है? हम अपने आप को जाने और समाधान पा सके। हमारी जिंदगी में हमने इतने प्रश्न और इतनी उलझने खड़ी कर ली हैं कि हमारा जीवन कहीं कोई गुत्थी सुलझा ही नहीं पाता है। अपने ही जीवन के समाधान हम नहीं पा पाते हैं, दूसरे के जीवन को समाधान देने के लिए जरूर उत्सुक हैं हम। तुम ऐसा कर लो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में कितनी उलझने हैं, मुझे कैसे सुलझा लेनी चाहिए, मुझे कैसे समाधान हासिल करना चाहिए, ये प्रयत्न हमें करना चाहिए। भगवान की भक्ति के दौरान ये भावना आए कि अब ज्यादा उलझूंगा नहीं, अब ज्यादा जिंदगी में प्रश्न ही खड़े करूंगा, मैं अब जिंदगी में समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश करूंगा। एक चीज तो हम भगवान अनंत की भक्ति से अगर भगवान के जैसा बनना चाहते हैं तो बनने की शुरुआत करने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और वे सर्वव्यापी हैं और सर्वमान्य हैं। हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम भी सर्वव्यापी बने। सर्वव्यापी बने मतलब सबके हृदय में रहें। सर्वव्यापी बनने का मतलब ये नहीं है कि सब जगह उपस्थित रहे, नहीं, कोई भी कहीं भी चाहे वो मेरी उपस्थिति को फील कर सके। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? अनंत भक्त दो चीजें हैं। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम कहीं भी रहें लेकिन सब जगह हर आदमी हमें फील करे हमारी प्रेजेंस को, और इतना ही नहीं, हम भगवान की प्रेजेंस को हर जगह फील करें, कर सकते हैं। हम दुकान में बैठे हैं और भगवान की प्रेजेंस को फील करें तो बेईमानी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। बेईमानी करते हैं यानी उन क्षणों में हम अपने भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, ऐसा कह लो। जिन क्षणों में मेरा मन बेईमानी करने का होता है, जिन क्षणों में मेरा मन दूसरे के साथ चीट करने का होता है, छल कपट करने का होता है, लोभ करने का होता है, वे सारे क्षण ऐसे हैं जिनमें हमने भगवान की प्रेजेंस को फील नहीं किया। भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह उपस्थित हैं, मैं फील तो करूं, मेरे भीतर भी है, वही भगवत्ता मेरे भीतर है, जैसी कि अनंत भगवान के भीतर। ऐसा यदि हम विचार करें और उनको हर जगह अपने साथ रखें, हमने तो मंदिर तक भगवान को सीमित कर दिया है, और हमने तो ताला भी लगा दिया कि देखो हमारे साथ मत आ जाना, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करोगे वहां बाहर, हमें कितनी दुकान में काम करना रहते हैं और कहां कहां तो घूमना पड़ता, धूप में हमारे साथ कहां घूमोगे, यहीं बैठो, हम आएंगे सुबह रे, जल भी डालेंगे और अर्घ भी चढ़ाएंगे और पूजा भक्ति भी करेंगे, आप भी खुश अपन भी खुश, कह को आप इंटरफियर करो हमारे कामों में, हमने उनको वहीं पर सीमित कर दिया, जबकि हमें उनकी भक्ति करके उन्हें अपने साथ लेकर के निकलना था बाहर, कि मैं अकेले इस संसार में कहीं भी भटक जाऊंगा, आप साथ में रहना, आप साथ में रहना, आप संभाले रहना। भक्ति में तो यही प्रक्रिया बननी चाहिए, भगवान को हम अपने साथ लेकर के और बाहर निकले हैं संसार के बीच, ताकि हम भटक ना सकें, हमें उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होती रहे, यही उनका सर्वव्यापी बना, यही उनका सर्वमान्य बना है। और दूसरी चीज, भगवान की एक क्वालिटी होती है जिनेंद्र भगवान की, कि उन्होंने अपने शत्रुओं को जीत लिया। बताइए, शत्रुओं को जीत देने का मतलब क्या है, कि सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया? शत्रु को समाप्त करने वाला तो अच्छा नहीं माना जाएगा, शत्रुता को जिसने समाप्त कर लिया हो वो अच्छा माना जाएगा। शत्रु यहां कौन है? हमारे भीतर अगर शत्रुता है तो सब शत्रु हैं, और हमारे भीतर अगर मित्रता है तो कोई यहां शत्रु नहीं है, सारे के सारे मित्र ही हैं। हमने अपने भीतर की, भगवान ने शत्रुओं को समाप्त कर दिया, इसके मायने क्या है कि अब उनका कोई शत्रु नहीं रहा, सब मित्र हो गए। क्या भगवान की भक्ति से मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं ले सकता कि मैं दिन भर में कितनी शत्रुता करता हूं, या कि मैं कितनी मित्रता रखता हूं लोगों से, मेरे कितने मित्र हैं कितने शत्रु हैं ये नहीं, मेरे भीतर कितनों के प्रति मित्रता है, मेरे भीतर कितनों के प्रति शत्रुता है, द्वेष है, इसका विचार कर ले हम। और कोशिश हमारी ये हो, सारे दिन भर कोशिश हो, जब तक कि फिर से भगवान